यही है उस पनीर का सह संसार स्टील। इतना घर बनाया है, फैक्ट्री चला रहा है, दुकान सब काम कर रहा है, किस लिए? 24 घंटे में एक दिन रस मिलेगा, बस उसी के लिए घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझा दे रहा है। तो और क्या लाभ है घर गृहस्थी? बताइए, दुख के अलावा और क्या लाभ? कोई सुख है उसमें? लेकिन वो उस खुशी की प्रतीक्षा करता रहता है। इसे कान मधु लो, छोटा मधु मिलेगा। अच्छा, उसमें भी अपनी स्त्री का जो संग है वो तो चलिए कुछ एकादशी है, तो अच्छा सुख है वास्तव जागतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं। लेकिन परिवार पर प्रज्ञानी और मान दूसरे का धन लेना चाहता है, दूसरे की स्त्री को छीनना चाहता है और उसको कदाचित प्राप्त हो जाती है वह स्त्री, तो वो भोग नहीं पाता। बहुत तुच्छ सुख है। भगवान ने भागवत को कहा है गोपी जनों से, जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। वो स्त्रियों के लिए जो पति का साथ है वो जुगुप्सित है, लोक में निंदित है और बहुत कष्ट से मिलता है। निंदित है, कष्ट से मिलता है और बाद में नरक मिलता है, लोग परलोक भी नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम लोग लौट जाओ। भगवान ने समझा रहे गोपी जन, मैं एक पति चार पुरुष हूं, हमारे साथ है जंगल में रहना ठीक नहीं। भगवान तो सबसे वास्तविक पति है, उनका दूसरी है। लेकिन यहाँ यह बात कही जा रही है कि ये जो परिस्त्री का संग है और दूसरे के धन को चुरा करके खाने का जो सुख है, मधु की एक नाम मात्र का बुंद है। जब आदमी अपनी कमाई करके खाता है तो वो जो कमाई है वो रस है, इसमें रस आएगा। परलोक में भी उसका शरीर ठीक रहेगा, सुख भोगेगा इस लोक में। लेकिन दूसरे का धन लेकर खा रहा है तो इस लोक में भी तो पकड़ लिए जाने पर दंडित होता है और परलोक में जमराज के हवाले जाता है, सुख भोग नहीं पाता है, देर करके भोगता है। और खास करके परिस्त्री का तो वह राजा के द्वारा भी दंडित होता है, सरकार द्वारा भी और स्वामी द्वारा भी। उस स्त्री का कोई स्वामी है, भाई है, पति है, पिता है, ये ससुर है, उस तरह से उस स्त्री के जो संबंधी है उसके द्वारा भी दंडित होता है। तो उस समय अपार निरय पति तो अपार निरय में मानी नरक में गिर जाता है मारे जाने पर। दो नरक है इस धरती पत्र पर, एक है कारागृह और दूसरा है अस्पताल। यही अर्थ अस्पताल भी एक नरक और कारागृह नरक, इन दोनों जगह पर आदमी जाना नहीं चाहते है तो नहीं, लेकिन पकड़ कर जाना पड़ता है। तो दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का अपहरण करता है तो इस नरक में जाना पड़ता है। अब ये बड़ा नरक तो बाद में भोगेगा, अब प्रतिष्ठ इस पृथ्वी पर स्थित नरक में जाना पड़ता है। वो स्वीट पैक दिया गया तो अस्पताल और कारागृह। कारागृह वास्तव में नरक है, तो जो लोग गए हैं वो जानते हैं। वो चाहे फर्स्ट क्लास का नरक हो, चाहे सेकेंड क्लास का हो, थर्ड क्लास का हो, लेकिन नरक नरक जिन जो पशु जैसा अधीन रखा जाता, गिन गिन करके शाम को रूम में भर देते हैं पशु जैसे गिन के। और कोई भी इधर उधर गिनती में बैठ गया तो उसको पेट से मारते हैं सिपाही पुलिस लोग मारते, गिनते हैं पशु जैसे। और 24 घंटे में 10 बार गिनते हैं, फिर भी कभी कभी एक अध भाग जाते हैं सुना गया है, फिर भी ऐसा भाग जाते हैं। गुरुवार में एक बार कारागृह में गया था तो हमारे पास जेलर आए बैठे, तो मैंने कहा कि हम लोग कीर्तन गाएंगे शाम को, संध्या आरती करेंगे, हम उनका नियम। तो अगर ठीक है खींचे तो आकर के कीर्तन सुनते थे, मैं कथा पढ़ता था तो कथा सुनते। मैं कहा कि हमको मृदंग लाने की छूट दीजिए जेल। तो वो कहे कि नहीं स्वामी जी, मृदंग आप लोग बजाएंगे, कीर्तन गाएंगे तो उधर को खिड़की का खिड़की का छोर काट करके भाग जाएगा, आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, कीर्तन की आवाज पिसक जाएगी और कोई भाग जाएगा। मैं कहा अरे इस तरह फिर भी भाग जाते, सुना जाता जेल से इतने कहे भाग, और जेल से भाग गए तो पुलिस की नौकरी चले जाए। क्यों भाग गए, कैसे तुम देख रहे हैं ये पूछा जाता है, एक कॉमन बात। तो ये जो कारागृह है ये इस पृथ्वी का नरक है और अस्पताल अस्पताल भी बहुत नरक है। वो तो सुधारने के लिए होता है, नरक जो असली है वो भी सुधारने के लिए ही बनाया गया है। और उस नरक से जो आप लौटते हैं वास्तव में शुद्ध हो जाते हैं। जेल से आने के बाद तब आदमी सज्जन हो जाता है, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। एक कारागृह अथा तस्मा विधाय था कि कर्माश्रम आत्मन संसार अपना उदाहरण के। इस तरह से दोनों कर्मों से चाहे वो उभाय था तस्मा अथा तो उभाय चाहे लौकिक कर्म करे व्यक्ति चाहे शास्त्रीय कर्म करे, दोनों कर्मों से इस प्रवृत्ति मार्ग में संसार क्षेत्र में भटकना पड़ता है। यह बात है कि जब वह शास्त्रीय कर्म करता है तब ऊपर के वन में जाता है, स्वर्ग वन में, तो थोड़ा वन अच्छा है, स्वर्ग जो है कुछ अच्छा है। अगर नरक वन पृथ्वी वन हवा तभी तो सब जगह है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे स्थान भी हैं लेकिन ज्यादा दुख का स्थान। जब मुक्त स्तर में दो बंधा देवदत्त उपाक्षिणत तस्मात विष्णु मित्र अति अनवस्थित। अब कह रहा है कि मान लीजिए किसी की स्त्री को भोगना चाहता है, किसी के धन को भोगना चाहता है और पकड़ लिया गया और नरक में डाल दिया गया, जेल में अस्पताल में। लेकिन तत्व मुक्त यदि वहां से फिर छूटता है तो फिर उसी को भोगना चाहता है, फिर दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, लेकिन भोग नहीं पाता है, उससे दोदक छीन लेता है। दोदक मतलब एक स्लाइस जेट, कोई भी दोदक मैंने कोई आदमी, तो उससे दोदक छीन लेता है और दोदक से फिर विष्णु मित्र छीन लेता है। किसी के लिए भी कॉमन नेम है, नाम है दिया जाए तो वो भोग नहीं सकता। क्यों छीन लेता है, वास्तव में यहां का जो धन है ये भोगने का सामान है, घर है, द्वार है, कार है या स्त्री है, स्त्री को भोगना चाहता है दूसरे की स्त्री को, लेकिन अगर वह दो नंबर की औरत है तो उसको दूसरा व्यक्ति देवदत्त बहुत धन का लालच देकर के अपने साथ लेगा। तो देवदत्त से भी ज्यादा धन विष्णु मित्र को है तो भोग लेगा, तो भोग भी नहीं पाता, पाप करता है और उसके साथ रह भी नहीं पाता है, क्योंकि ये जो सारा व्यवहार चलता है धन पर चलता है। आप धन दे करके किसी स्त्री को अपने पास में किए तो दूसरा ज्यादा धन दिखाकर तो उसको ले गया, तो उससे भी ज्यादा धन दिखाकर दूसरा ले गया, क्योंकि एक से एक धन ही हम लोग इस संसार में, इससे धन यो है उससे धन यो है। जो तक से विष्णु मित्र छू, विष्णु मित्र शब्द यहां अच्छा नहीं लग रहा है ना, मतलब वैष्णव कल कोई ऐसा होता है तथाकथित वैष्णव लोग भी दूसरे की औरत छीन लेते है ना, विष्णु के मित्र है फिर भी छीन। भागवत में सारा फोटोग्राफी किया गया बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा। ऐसे विष्णु मित्र किसी का भी नाम है लेकिन एक श्लेष अर्थ चलता है, तब तो ऐसा देखा गया वैष्णव बन गए हैं और दूसरे की स्त्री को फुसला करके चल दिया अमेरिका है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। और कभी कभी तो गुरु की पत्नी को ही रखकर चलते हैं, सब चलता है विदेशियों में, वो ये नहीं विचार करते हैं कि हमारे गुरु के गुरु भाई की पत्नी है उसे नहीं रखना चाहिए। तो भतीजा है एक प्रकार से, वो अपनी मां को रखकर चल, कई लोग छोड़ते रहते हैं, डाइवर्स होता रहता है,
पत्नी छोड़कर सन्यासी हो गए चाहे दूसरी कई पत्नियां रख लिए, पत्नी छोड़ते हैं सन्यास के लिए नहीं, नया ग्रहण करने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कोई विष्णु मित्र ले लिया, वैष्णव बना हुआ है, तिलक कर रहा है, कंठी कर रहा है, लेकिन चलता है सब। इस तरह का स्टैंडर्ड गिर चुका है वैष्णव की हालत। भोगेगा नहीं उससे भी दूसरा छीनेगा, धन छीन लेता है, आयु छीन लेता है, स्त्री छीन लेता है, ये सब चलता रहता है। विदेश में तो बहुत हम समझते हैं कि 60% डाइवर्स होता है, एक स्त्री पता नहीं कितने कितने पतियों के साथ रही। एक व्यक्ति से मैं पूछा कि हु इज योर फादर एंड व्हाट ही डज, तुम्हारा पिता कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका, कहाँ रहता, एक भक्त बताया। तो हमसे कहते हैं आई डोंट नो हु इज माई फादर बिकॉज माई मदर हैज सो मेनी पर्संस, सो मेनी कनेक्शंस विद सो मेनी पर्संस, आई एम नॉट श्योर हु इज माई फादर। ये दशा मतलब बानर और कुत्ते की तरह है संबंध। तो कुत्ते के गर्भ से उत्पन्न होने वाले कई कुत्ते होते कई रंग के होते हैं, क्योंकि कई कुत्तों के साथ उसने संग किया। कुछ पता ही नहीं है कि कौन मेरा बाप, बताइए। और ऐसी दूषित संस्कृति आकर हमारी भारतीय संस्कृति को दूषित कर रही, उधर का कचरा आकर के इधर घुस रहा। इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। मैं जब विदेश में गया तो मेरे मन में यही लालसा उत्पन्न हुई कि कम से कम अपने प्रवासी भारतीयों को बचाना चाहिए, मेरे मन में ये आया। और वैसे मैं तो प्रवास कर रहा हूं, सब कुछ तो भगवान कृष्ण के हाथ में है, वो जैसा करना चाहेंगे वैसा होगा। प्रभुपाद जी की कृपा से कुछ लोग पहचाने हैं कि वास्तव में हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, यही जीने का साधन है, इसी से सुख मिल सकता है। बाकी जो पाश्चात्य संस्कृति है वो तो बहुत भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है। जब स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं रहा तो क्या सुख रहा गृहस्थी में, है कि नहीं। जो स्त्री अपना हृदय दूसरे पति को अर्पित की है और वो छोड़ करके फिर दूसरे के पास चली जाए तो ये तो नरक है, और वहां के लिए कॉमन चीज है, कोई इसको औरत नहीं मानता। ये दिखाया गया है कि वास्तव में इस संसार में कुछ सुख है तो अपनी पत्नी के साथ सुख है, या अपनी मेट कमाई में सुख है। अपना जो धन कमाया है उसको खाए आदमी कम ही हो, लेकिन उसमें सुख है। परदार और पर धन में तो हमेशा वो छीनने का डर रहता है। जब हम पर धन को हर रहे हैं तो हमारे लिए पर है, दूसरे छीनेगा, वो छीन कर ले जाएगा, वो छीन कर ले जाएगा, उसे वो छीनेगा, उसे वो छीनेगा। इस कहने का आशय है कि भोग भी नहीं सकता, भोग भी नहीं सकता, सुख से नहीं रह सकता। और पाप तो बैठ ही गया सिर पर, तो छीनने का चुराने का पाप था तो लग ही गया, भोग भी नहीं सका, तो भोग और परलोक दोनों गए। अब लोक में अब कीर्ति होती ही। तो कथित सीता सीत वार्ता दिनेकाधिदैव भौतिकात्मिया नाम दशानाम प्रति निवारण अकल्प दुरंत चिंता चिंता विषण। कभी कभी शीत का निवारण नहीं कर पाता है इस जगत में, मतलब जाड़ा का कष्ट भोगता है, या और भी घाम बयार दैविक भौतिक आध्यात्मिक दुख इनको दूर नहीं कर पाता है तो बहुत दुखी रहता है। प्राय संसार में ऐसे लोग ज्यादा जो चाहते हैं कि हम दुख दूर करें, लेकिन दुख हो नहीं पाता है, हमेशा ऋण से ग्रस्त रहते हैं, रोगी रहते हैं, है ना। गरीब लोग ज्यादा है, फिर भी गरीब भी तो माला नहीं उठा रहे हैं, ये सोचने की बात। और यह भी सोचने की बात है कि तथा कथित प्रचारक लोग केवल ऊंचा ऊंचा भवन देखते है ना, चाहे झोपड़पट्टियों में वो जाना पसंद नहीं करते। ये आजकल के साधुओं का रोग हो गया, अब केवल धनों के यहां जाना चाहते। भक्त बनाना है तो एक गरीब को भक्त बनाया, तो जीव को भक्त बनाया, तो जीव उसके हृदय में, उस जीव का और करोड़पति का जीव जो है दोनों बराबर हुआ। एक गरीब को भक्त बनाया, एक धनी को बनाया, दोनों एक समान है। लेकिन लोग सोचते हैं कि धनी को भक्त बना दिया तो बहुत बड़ा काम किया क्योंकि बहुत पैसा बनेगा। पैसा को कृष्ण कॉन्शियस बनाना तो है ना, है कि नहीं? कृष्ण कॉन्शियस बनाना है आदमी को, जीव को। तो गरीब फुटपाथ पर रहने वाला आदमी और एक करोड़पति अरबपति आदमी दोनों का एक समान महत्व है भक्त बनाना। ये नहीं सोचना चाहिए कि गरीबों को बनाए तो कोई महत्व नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल समदृष्टि रहकर के प्रचार करना चाहिए। यहां पर ये बताया गया है कि गरीब आदमी दुखी रहता है, वो शीत का घाम का वर्षा का निवारण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं झोपड़पट्टियों में रहते हैं, वर्षा का निवारण नहीं कर सकते हैं, रोड पर सो जाते हैं, बहुत दुखी है। लेकिन वास्तव में दयालु पुरुष उन पर ज्यादा दया करेगा। कम से कम और नहीं दे सकते तो माला दीजिए, सिखाइए कि भगवान की भक्ति करो, ये करो, ये करो, प्रसाद देना। लेकिन उल्टा होता है, अगर कोई भिखमंगा आया मांगने के लिए कार के पास तो देने भी चलो तो लोग कहते हैं अरे इसको मत दीजिए, ये तो ये पैसों का दुरुपयोग करते हैं। एक बार मैं जा रहा था कार से, एक भिखमंगा आया, बेचारा शीशा भी साफ किया, तो वैसे भी उसका हक हो गया शीशा साफ करने से, कोई दया नहीं थी वास्तव में, न्याय था। तो हम लोग को निकाल कर देने लगे तो एक भक्त कहता अरे महाराज जानते नहीं ये बहुत धनी होते हैं। मैंने कहा कितना फ्लैट इनका है जरा बताओ तो, बहुत धनी होते हैं, एक रुपया देने में तुम गरीब हो जा रहे हो, बहुत धनी। ये तो कहने में शर्म भी नहीं लगती, बच्चा है आया तुम्हारा शीशा साफ कर रहा है फिर भी बैठे हो, एक रुपया देने में मर जाओ। जरा देखिए आदमी की बुद्धि। इस तरह से मांगने वालों को नहीं आदमी थे, चलो कुछ है चलो बुला, लेकिन जो शीशा साफ किया भले वो 10 सेकंड किया कुछ भी किया, तो जिसके हृदय द्रवित नहीं हो गया कि बेचारा एक गरीब आदमी और हमारा शीशा साफ किया, महान व्यक्ति थोड़ा सा उपकार को बहुत मानता, ये भगवान का स्वभाव है, थोड़ी सी सेवा को बहुत मानते, लेकिन फिर भी शीशा साफ करने वाले को भी नहीं देते। ये धिकारने लायक बात है वास्तव। अगर ड्राइवर है तो कोई बात नहीं, वो नहीं देगा क्योंकि बेचारा वो धनी नहीं, मालिक भी बैठा हो तो उसको जरूर देना चाहिए। मालिक भी बैठा हो और न दे, कुछ सीखने की बात है। थोड़े थोड़े व्यवहार से बहुत बड़ा अपराध हो जाता है या बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। मेरी ये कहने की दृष्टि है, मेरा सारांश यह है कि सब पर समान दृष्टि रखनी चाहिए। कोई गरीब आदमी आया हमारे पास तो उसे भी कृष्ण कॉन्शियस बनाया है, कोई धनी आदमी आया तो उसे भी बनाना है। यह नहीं कि धनी आया तो कूते ऐसे पूछ डुला करके बस चपरूसी करो और ये भक्त हो जाएगा तो दुनिया तर जाएगी, ऐसा नहीं। उससे होता क्या है, धनियों के धन को लेने पर उनका धन का संस्कार भी हमारे पास आता है और खाने से रद्द हो जाएंगे, ये समझना चाहिए। उनका पाप भी उसके साथ आता है, इसलिए वास्तव में शास्त्र कहता है, भागवत में लिखा गया है कि स्त्रियों शूद्र देश चैन अत्यो कम क्या भवात। 9 जगेश्वरों में से एक जगेश्वर कहते हैं मैंने महाराज से कि स्त्री शूद्र इन लोगों पर आप जैसे लोगों को अधिक दया करनी चाहिए, अनुकंपा करनी चाहिए। भागवत में प्रवचन यज्ञ में प्रवचन चल रहा है, 9 भाइयों से 9 प्रश्न किए मिली महाराज, एक एक प्रश्न का उत्तर दो। बता आप जैसे पुरुष को स्त्री सूत्र पर ज्यादा कृपा करना चाहिए। क्या कृपा करना, दूर हरि कथा के दूरे चाचित कीर्तना, क्योंकि भगवान के कीर्तन से दूर हो गए हैं, भगवान के कथा से दूर हो गए हैं, उनको कथा देनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, स्नेह करना चाहिए। आप किसी गरीब को थोड़ा सा प्रसाद दीजिए तो कई दिन याद रखेगा, और धनी आदमी को दीजिए तो लेना भी नहीं चाहेगा, और ज्यादा भी दीजिए तो उसको याद नहीं रखेगा। तो ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, इस तरह से दृष्टि होनी चाहिए। कभी कभी व्यवहार में एक दूसरे से छल हो जाता है, कोई ठग लेता है तो उसके साथ झगड़ा हो जाता है, इस तरह से बात। अब उसी संसार में कौन कौन और दुख हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। और धनी मुस्लिम इन्हें उपसर्ग तथा सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह मत्सर ईर्ष्या अवमान छोट पिपासा आधि व्याधि जन्म मरणादय इनको उपसर्ग कहते हैं। सर्ग का अर्थ होता है जन्म और उपसर्ग का अर्थ होता है जन्म लेने के बाद जो हम भोगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। जब से जन्म हुआ है तब से क्या क्या भोग रहे हैं लिस्ट दिया गया है, कई तरह के दुख भोगना पड़ता है। तो इस संसार मार्ग में देखिए सुखम या उपसर्ग है। कभी कभी हम सुख भोगते हैं लगता है हम सुखी हैं, पहन कर खा कर घूम कर जो हो बीच में टहल कर हम मानते हैं कि हम सुखी हैं, या कॉलेज में पढ़कर प्रोफेसर हो गए हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी हैं। सत्वगुण के कारण सुख की अनुभूति होती है, लेकिन दुख भी भोगते हैं। 24 घंटे में मिलाकर देखिए तो आप सुख की मुद्रा में बहुत कम रहते हैं, अधिक समय दुख की मुद्रा में रहते हैं। सो जाते हैं तब तो भूल जाते हैं, वो तो सुख दुख दोनों से परे हो गए, वो तो एक प्रकार की समाधि ही है। लेकिन फिर भी सपने में भी दुख भोगते हैं अधिक, है ना? सपना भी अच्छा अच्छा ज्यादा नहीं देखते, अधिक सपना खराब देखते, दुख उसको कहते। तो दुख का क्या अर्थ है? प्रतिकूल वेदनी है। जब हमें प्रतिकूल की भावना होती है वो ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो दुख उसको कहते। राग का अर्थ है विषयों में शोभन अभ्यास। इस संसार के जो विषय हैं दुखमय हैं, लेकिन यहां राग हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये सुखमय है, ये सुखमय। अनित में नित्य बुद्धि होना, असुख में सुख बुद्धि होना, जो अपना नहीं है उसमें अपनी बुद्धि हो जाना, जो ठग है उसमें मित्र बुद्धि हो जाना, इसको राग कहते हैं। अच्छा द्वेष, कुछ लोगों से द्वेष करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें पसंद नहीं आता। भय, द्वेष जननी मनोवृत्ति को भय कहते हैं। जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा नुकसान कर रहा है, ये कर रहा है, हमारा ये हो जाएगा, तो इसको भय कहते हैं। और अभिमान का अर्थ है कि सांसारिक पद पोजीशन के चलते, देह के चलते हमारे अंदर बड़प्पन का भाव आता है, इसको अभिमान कहते हैं। मैं स्कूल में जन्म लिया हूं, मैं विद्या पढ़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं ये सब मिथ्या है वास्तव में, लेकिन इसका अभिमान उत्पन्न होता है। प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देना, प्रमाद असावधानी कहें। भगवत भजन करना या घर का काम धंधा करना जो भी है हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम कर्तव्य नहीं पालन करते, भूल जाते हैं, इसको प्रमाद करते हैं। उन्माद, उन्माद का अर्थ है कि हम जानते हैं कि हम कुछ कुल में जन्म लिए हैं, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे खानदान के हैं, विद्वान हैं, धनी हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा का अतिक्रमण करना, जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब हम नियमों को तोड़ते हैं तो इसको उन्माद का उन्माद। और शोक, शोक का अर्थ इष्ट वियोग जनित भीति, शोक जो हम चाहते हैं लेकिन उसका जो वियोग होता है नहीं मिलती है बस, तो उसके चलते जो हृदय में संताप होता है उसको शोक कहते हैं। और मोह का अर्थ है परिवार के लोगों को मेरा मानना और देह को मैं मानना। लोभ का अर्थ है अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तु होने पर भी अधिक की लालसा, इसको लोभ का बनी रहती है कि नहीं? धनी से धनी आदमी को लोभ बना हुआ है कि अभी तो हमको कम है, है? और धनी लोगों को हमेशा घाटा रहता है और उनका घाटा करोड़ में चलता है। एक रिक्शा वाला है, मान लीजिए दिन भर रिक्शा खींचा, वृंदावन के रिक्शे की बात कर रहा हूं, बॉम्बे की नहीं, तो एक दिन में मान लीजिए 100 रुपया कमा रहा है, 60-70 कमा रहा है, किसी दिन हो सकता है वो 65 कमाए, तो बेचारा यही जोड़ेगा कि 5 रुपया घट गया आज नहीं मेरा, तो उसे 5 रुपये का घाटा। लेकिन जो करोड़पति लोग हैं उन्हें तो कई लाख का घाटा होगा, उनका घाटा भी होगा तो कई लाख का।
तो करोड़पति भी सोच रहा है कि अभी हमको पर्याप्त नहीं है, अरे पति ये सोच रहा है कि हमको पर्याप्त नहीं है, दस वर्ष भी प्राइम मिनिस्टर को आ जाता है लेकिन सोचता है अगले पंचवर्षीय योजना में भी मुझे होना चाहिए, अभी पर्याप्त नहीं हुआ, अब मर करके बनेगा तब पर्याप्त होगा। ये जो भावना है कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है और अधिक इच्छा है तो इसको लोभ करते, लोभ बना हुआ है सबके मन और मत्सर्ज। मत्सर्ज का अर्थ मत्सर पर दूसरे के धन को, दूसरे की बड़ाई को देख करके जलना, वो कैसे बड़ा हो गया हमसे, कैसे ऐसा हो गया, ये हो गया, ये चलता ही रहता है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ शत्रु के उत्कर्ष को न सहना, और मत्सर्ज का अर्थ किसी के उत्कर्ष को न सहना। अवमान तिरस्कार होता रहता है, आधी मन में बेचैनी रहती है, व्याधि शरीर में रोग होते हैं, और भूख प्यास जन्म मरण ये सब प्रसिद्ध उपसर्ग है, ये सब लगे हुए। अब उदाहरण आया था कि कभी कभी या किसी भुजा के लता, किसी लता की भुजाओं को पकड़ करके और खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है या सो जाता है, और उस लता पर बैठे हुए पक्षियों के मधुर मधुर गीत सुनता रहता है, उसकी व्याख्या कर रहा, उसका क्या अर्थ है, उस लता का अर्थ और पक्षी का क्या अर्थ है। क्योंकि देव माया स्त्रिया, देखिए इसको क्रम से वर्णन करना कहते हैं, एक बार वर्णन कर चुके हैं, स्त्री का वर्णन कर चुके हैं, उसको आंधी उसको चक्रवात कहकर, लेकिन यह इतना आवश्यक आवश्यक विषय है कि सुखदेव गोस्वामी पुनः इसकी आवृत्ति कर रहे और जगभरत जी ने भी किया था, जगभरत जी के श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। कुछ एसेंशियल प्वाइंट होते हैं, उनकी आवृत्ति बार बार होनी ही चाहिए। इस संसार में सबसे अधिक जीव फंसा है स्त्री में, स्त्री ही सबसे बलवती माया है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देव माया, देव मतलब विष्णु, नारी जो है वो विष्णु की प्रत्यक्ष माया है, मूर्तिमति माया। आदमी है उसको पार कर जाएगा किला दुर्ग और सब, लेकिन स्त्री को पार करना बहुत कठिन है, उसमें बड़े बड़े वीर जितेंद्रीय लोग भी फंस जाते हैं, इसीलिए उसको लता कहा गया है। ये चलता है चलता है, वो देखता है कि लता फैली हुई है और उसकी भुजाएं बड़ी कोमल कोमल है, तो उसी में वो लग जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, और वो लजता है तो बस आनंद का अनुभव करने लगता है, उसको बैठे हुए पक्षियों का कलरव सुनने लगता। भगवान कृष्ण ने भी अपनी लीला में दिखाया है कि स्त्री बहुत दुर्गम किला है, उसको पार करने कठिन। जैसे मथुरा के राजपथ पर वो जा रहे थे, कहीं से कपड़ा लिए, कहीं से माला लिए, कहीं से चंदन लिए, नहीं माला लिए, तो एक स्त्री जा रही थी उस राजपथ पर, कुछ जाए जो जिसके पीठ पर ऊपर था, दो ही थी तीन जगह से, लेकिन मुख बड़ा सुंदर था, तो उसको देख करके भगवान कृष्ण मांगने लगे कि अंगराग दे दो हमको लगाने के लिए, तुम कौन हो, किसकी हो और किसके लिए अंगराग ले जा रही हो। तो हरीश्वरी जी ने अपनी टीका में लिखा है, भगवान अपनी लीला द्वारा यह सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान की गति कहीं नहीं रुकी, लेकिन एक स्त्री ने रोक लिया, और वो भी दे ही कुब्जा ने रोक लिया। भगवान अपनी लीला द्वारा सिखा रहा है कि पुरुष की गति कहीं नहीं रोक सकती है, लेकिन स्त्री के पास तो उसे सरेंडर कर ही देना है, कहीं से वीर बनकर आ गए। ऐसा लिखा गया, सारी दुनिया जीत करके राजा लोग आते हैं दिशाओं को, लेकिन जब राजभवन में अपनी पत्नी के पास आते हैं तो हाथ जोड़ करके चरण में गिर जाते हैं, क्योंकि वो मान कर बैठती है, बिना मतलब को कहती है कि तुम बहुत महीनों से बाहर रहे हो, मैं जानती हूं तुम दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम किया होगा, वैसे बिना मतलब के बोलती है, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो उसी से मैं समझती हूं कि तुम्हारे प्रेमी स्वभाव है, तो देश विदेश में गए थे तो बहुत स्त्रियों से मिला होगा, और तुम बिना मतलब के झूठ बोलते हो कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानता, जाओ जाओ जाओ, जिसके साथ प्रेम था उसके साथ रहो, तो मुकुट उतार करके उसके चरण पर रह करके शपथ खाता है। शपथ खाकर कहता हूं कि मैं सपने में और किसी औरत को नहीं जाना, तुम मुझे प्राण से भी प्यारी हो। और उस समय जब चरण में गिरता है तो नाथ से नाथते कि नहीं नहीं तुम्हारा क्या विश्वास है, हटो इसका ऐसा झूठ बोलते हैं। ये भागवत का अनुवाद वो कर रहा हूं। या कदो करोती पदा क्रांतान भू बिजली भेड़ के लो, बाण नहीं चलाती है, तलवार नहीं चलाती है, भावों के मयूर से उनको अपने पदावनत कर देती है, अपने चरण में गिरा देती है। तो भाव के मयूर करके कहे जाओ जाओ तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, तुम जो हमको मानते हो मैं सब जानते, क्यों झूठ बोल रहा है। इसी परिचरण में कृपा वन वस्तु